पृष्ठ संख्या 102 अध्याय 7 पुरातात्विक छायांकन। छायांकन एवं रेखांकन ड्राइंग को पुरातत्व में रिकॉर्ड की दो धुरियां कहा जा सकता है। पुरातत्व का एक अभिन्न अंग उत्खनन है, जिस पर पुरातत्व की कार्यविधि बहुत कुछ अवलंबित है। उत्खनन वास्तव में एक प्रकार का विनाश कार्य है, जिसके माध्यम से पुरास्थल के निक्षेपों को खोदकर पुरावशेष प्राप्त किए जाते हैं। कोई भी पुरातात्विक अनुसंधान उस समय तक सफल नहीं हो सकता है जब तक कि उत्खनन के द्वारा किए गए विध्वंस का छायांकित एवं रेखांकित प्रमाण उपलब्ध न हो। प्रारंभ में जब पुरातत्व का आशय पुरावशेषों तथा पुरानिधियों का संग्रह मात्र था, उस समय छायांकन की महत्ता ठीक से नहीं आंकी गई थी। लेकिन जैसे जैसे पुरातत्व के अंतर्गत मानव के अतीत को सम्यक एवं समग्र रूप से जानने का प्रयास किया जाने लगा, वैसे वैसे छायांकन का महत्व भी बढ़ता गया। पुरातात्विक सर्वेक्षण तथा उत्खनन करते समय यह आवश्यक होता है कि जो वस्तु जिस स्थिति में उपलब्ध हुई हो, उस वस्तु का उसी स्थिति में उचित ढंग से रिकॉर्ड कर लिया जाए। इस प्रकार के विवरण के लिए सबसे अधिक उपयोगी माध्यम छायांकन तथा रेखांकन है। रेखांकन के द्वारा किसी भी पुरावशेष की माप तथा उसकी सापेक्ष स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है। उस पुरानिधि के स्वरूप का वास्तविक ज्ञान केवल छायांकन के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। पुरातात्विक छायांकन में ध्यान देने योग्य बातें। छायाचित्र खींचने के लिए कैमरे के आविष्कार के समय से लेकर आज तक इस दिशा में महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय प्रगति हो चुकी है। सामान्य छायांकन तथा पुरातात्विक छायांकन के मूलतः एवं सिद्धांततः एक होते हुए भी दोनों में कुछ मूलभूत अंतर हैं। साधारण छायांकन में प्रकाश एवं छाया लाइट एंड शेड का विशेष बल दिया जाता है। फोटोग्राफर का ध्यान छायांकन द्वारा वस्तु ऑब्जेक्ट की कलात्मकता में अभिवृत्ति करने पर केंद्रित होता है। इसके विपरीत पुरातत्व संबंधी छायांकन में पूरा प्रयास इस बात पर होता है कि जो वस्तु जैसी है वैसी ही दिखे, उसमें किसी प्रकार की कृत्रिमता का समावेश न होने पाए। प्रायः हमें आँख से जो वस्तु जिस प्रकार की दिखाई पड़ती है, वह वस्तु छायांकन में पृष्ठ संख्या 109 उसी तरह की नहीं आ पाती है। उसमें किंचित अंतर हो जाता है। इसलिए पुरातात्विक छायांकन में इस बात पर विशेष बल दिया जाता है कि वस्तु में विरूपण, डिस्टॉर्शन की मात्रा कम से कम हो। आंखों से देखने पर किसी भी अनुभाग या अनुप्रस्थ काट सेक्शन के विभिन्न स्तरों में जो अंतर स्पष्ट रूप से नहीं दिखलाई देता, वह प्रायः छायांकन में नहीं आ पाता है। इसके अलावा छोटी मोटी गंदगी जो नेत्रों से नहीं देखी जा सकती है, उसे भी कैमरा अंकित कर लेता है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक होता है कि पुरातात्विक फोटोग्राफर को जिस वस्तु का चित्र लेना है, उसे भलीभांति तैयार कर लिया जाए। पुरातात्विक छायांकन में महत्वपूर्ण पुरावशेषों को प्रमुखता प्रदान करते हुए छायांकन किया जाता है। फोटो खींचने का प्रमुख उद्देश्य किसी पक्ष विशेष पर सारा ध्यान आकर्षित करने का होता है। इसीलिए प्रायः यह कहा जाता है कि पुरातात्विक छायांकन में छायाकार या तो पुरातत्वविद होता है अथवा स्वयं पुरातत्ववेत्ता ही फोटोग्राफर होता है। पुरातत्व संबंधी छायांकन में चित्रों में पुरातात्विक भावुकता का पूर्ण देना बहुत जरूरी होता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी प्राचीन नगर स्थल का फोटो खींचना है, तो नगर स्थल और वहां पर विद्यमान नगरीय खंडहरों तथा दीवालों आदि का यथार्थ चित्रण करना पड़ता है, अन्यथा वास्तविकता का आभास नहीं हो पाता है। प्राचीन लेख का चित्र खींचते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि लेख यदि कहीं पर धुंधला हो गया हो, तो आवश्यकता अनुसार उसे कोयले या खड़िया से चटक कर दिया जाए। यदि पत्थर के ऊपर काई लग गई हो, तो उसके ऊपर स्याही लगाई जा सकती है और थोड़ा सूखने पर उसे धीरे धीरे पोंछ दिया जाता है। इस तरह से केवल लेख में धसे हुए अक्षरों पर ही स्याही का अंश रह जाएगा। पत्थरों के बने हुए भवन अवशेषों एवं स्मारकों का छायांकन करते समय पत्थरों को ब्रश से भली भांति साफ कर लेना चाहिए, जिससे कि शेष पुरास्थल से भिन्न प्रतीत हो। दीवालों एवं उनके जोड़ों को भी फोटो खींचने के पूर्व अच्छी तरह से साफ कर लेना आवश्यक होता है। उत्खनन या सर्वेक्षण से ज्ञात सेक्शन यदि लगभग एक ही प्रकार का हो, तो विभिन्न स्तरों लेयर्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए यह आवश्यक होता है कि किसी एक स्तर को अधिक चिकना किया जा सकता है, दूसरे स्तर को थोड़ा खुरदुरा रखा जाए, तीसरे को यदि आवश्यकता हो तो थोड़ा नम कर सकते हैं। कहने का आशय यह है कि उन स्तरों को इस प्रकार से तैयार करना चाहिए जिससे कि विभिन्न कालों के जमाव अलग अलग स्पष्ट रूप से दिखने लगे। कतिपय पुरावशेषों एवं पुरानिधियों को फोटो खींचते समय उपयुक्त पृष्ठभूमि बैकग्राउंड तैयार करनी पड़ती है। सफेद रंग की वस्तु को उभारने के लिए काले रंग के मखमली कपड़े का उपयोग किया जा सकता है। काले रंग की वस्तु के लिए हल्के रंगीन कागज का उपयोग अच्छा रहता है। काले पुरावशेष को फोटो खींचने के लिए बिल्कुल सफेद कागज की पृष्ठभूमि इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि सफेद कागज कुछ कुछ प्रभाव विकिरण भी कर सकता है। मानव कंकाल तथा हड्डियों के पृष्ठ संख्या 104 नीचे काली मिट्टी रख देना चाहिए जिससे उनका सफेद रंग दिखलाई पड़े। यदि कंकाल के साथ मिट्टी के बर्तन भी मिले हो तो कंकाल के निकट रखे हुए मिट्टी के पात्रों की विशेष रूप से सफाई की जाए। मिट्टी के काले बर्तनों का फोटो खींचते समय उनके नीचे सफेद चाक अथवा खड़िया मिट्टी को रखकर भी काम चलाया जा सकता है। फोटो खींचने के ठीक समय प्रभाव विकिरण का परिहार करने के लिए विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। इसे कम करने की दृष्टि से आजकल की फिल्में सामान्य रूप से पृष्ठांकित अथवा रंगीन बनाई जाती हैं, किंतु उनसे यह कठिनाई पूरी तरह से दूर नहीं हो पाती है। यह ध्यान देने योग्य है कि पुरातात्विक छायांकनों में अभीष्ट पैमाने का उपयोग किया जाए। मापक स्केल के अभाव में किसी पुरातात्विक फोटोग्राफ को सही नहीं माना जाता है। पुरातात्विक फोटोग्राफ के साथ सामान किसी पुरातात्विक फोटोग्राफर के लिए सामान्यतः जिन विभिन्न साथ सामानों इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है उनका संक्षेप में यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है। अच्छे एवं उपयुक्त कैमरे, फिल्में, छन्ने, फिल्टर्स, लेंस, कई आकार प्रकार के पैमाने, तिपाई, सीढ़ी, डायरी तथा एक संदूक जिसमें फोटोग्राफी के संबंध से संबंधित आवश्यक साज सामान को सुरक्षित रूप से रखा जा सके। कैमरा छायांकन कार्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान कैमरा है। प्रारंभ में उत्खनन आदि पुरातात्विक कार्यों के छायांकन के लिए फील्ड कैमरे का प्रयोग किया जाता था जिसमें 16x2 इंच गुड़े 81x2 इंच की प्लेट लगती थी, लेकिन अब इनका प्रयोग बहुत कम हो गया है। अधिकांशतः क्वार्टर अथवा 2B तथा 35mm के कैमरे का प्रयोग किया जाता है। क्वार्टर साइज के उत्कृष्ट कैमरों के लेनहॉफ टेक्निका तथा हेलीवर्ट लेनहॉफ टेक्निका तथा हेलीवेड विशेष उल्लेखनीय है। ये कैमरे इस दृष्टि से भी बहुत उत्तम है क्योंकि उनके लेंस आसानी से बदले जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में इनमें विभिन्न फोकल लेंथ वाले लेंसों का प्रयोग किया जा सकता है। साधारणतः जितने कम फोकल लेंथ का लेंस होता है उतना ही उसका कोण एंगल बड़ा होता है। 2B अथवा 120 साइज के कैमरे में राली फ्लेक्स तथा यासिका अच्छे कैमरे हैं। 35mm के उत्कृष्ट कैमरों में असाई पेंटेक्स तथा कैंट्रोरेक्स आदि है। इन कैमरों के द्वारा सर्वेक्षण तथा उत्खनन स्थलों की फोटोग्राफी के साथ ही साथ पुरातात्विक स्टूडियो का कार्य भी हो सकता है। अब स्वचालित कैमरे ऑटोमेटिक विकसित हो गए हैं जिनका उपयोग छायांकन में होने लगा है। इनके विकास से पुरातात्विक छायांकन अपेक्षाकृत सरल हो गया है। पृष्ठ संख्या 105 फोटो का केंद्र फोकस मात्र 25 सेमी 6 इंच का होना चाहिए। बहुत बड़ा केंद्र उपयुक्त नहीं होता है। चित्र खींचते समय फोटोग्राफर को यह ध्यान रखना चाहिए कि कैमरे में उद्भासन क्लिक के समय कितने सेकंड का समय लगाने टाइमिंग की आवश्यकता है क्योंकि उसी के अनुसार क्लिक किया जाएगा। फोटो उतारते समय समतल देखने के लिए कैमरे के ऊपर बबल लेबल को लगा देना चाहिए जिसे यह ज्ञात हो सके कि खींचा जा रहा चित्र कहीं टेढ़ा तो नहीं हो रहा है। आंख द्वारा घास के एकाकी तिनकों के नजर नजरअंदाज को नजरअंदाज हो जाने की संभावना है, परंतु कैमरे के अत्यंत संवेदनशील लेंस में ये भद्दे दिखलाई पड़ेंगे। प्राकृतिक रूप में अलग अलग परिलक्षित होने वाले स्तर भी प्लेट के काले एवं सफेद ब्लैक एंड व्हाइट रंगों में कभी कभी एक हो जाते हैं। इसके लिए पुरातात्विक फोटोग्राफी में यथासंभव सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी चीजों को जानबूझकर चिकना अथवा खुरदरा करके फोटो खींचने के उपयुक्त बनाया जाता है। तस्वीर उतारते समय कैमरे को अभीष्ट वस्तु का फोकस लेने मात्र का आवश्यक समय देना चाहिए। यदि अधिक समय दिया गया तो फोटो काली पड़ सकती है। इस संबंध में फोकस को नियंत्रित करने के लिए प्रायः विभिन्न रंगों के छन्नों फिल्टर्स का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी पूरा फोकस न पड़ सके इसके लिए टीन की चद्दर अथवा काले कागज को भी उपयोग में लाया जाता है। पुरातात्विक छायांकन में प्रकाश का बहुत महत्व है। साधारण छायांकन में प्रायः कृत्रिम प्रकाश आर्टिफिशियल लाइट का उपयोग किया जाता है। पुरातात्विक छायांकन में इसकी गुंजाइश बहुत कम रहती है, चूंकि प्रकाश एवं छाया दोनों का बचाव करना आवश्यक होता है। इसलिए पुरास्थल फील्ड पर जो छायांकन किया जाता है वह ऐसे समय पर करना पड़ता है जबकि तीव्र प्रकाश न हो। यह सुविदित तथ्य है कि दिन में फोटो खींचते समय अधिक एवं तेज प्रकाश से बचना चाहिए। दिन भर में केवल कुछ ही ऐसा समय आता है जबकि पुरातात्विक छायांकन किया जा सकता है। छायांकन का कार्य सूर्योदय के बिल्कुल थोड़ा पहले उषा काल में जब सूर्य की आभा आ जाती है, लेकिन सूर्य स्वयं नहीं निकला होता है, अथवा सूर्यास्त के बाद गोधूली वेला में जबकि सूर्य के छिप जाने पर भी प्रकाश फैला रहता है के बीच के क्षणिक समयों में ही प्रायः अच्छी तरह से किया जा सकता है। कम प्रकाश में फोटो खींचना कठिन है जब तक कि फ्लैश का प्रयोग न किया जाए। अधिक प्रकाश में चित्र के काले हो जाने की संभावना रहती है। चित्र लेते समय कर्ण रेखावत प्रकाश डालना आवश्यक है। जहां प्रकाश सीधा नहीं पड़ता है वहां पर सफेद कागज कार्ड अथवा शीशे की सहायता से सूर्य का प्रकाश परावर्तित करके डाला जा सकता है। इस विषय में यह देखना आवश्यक है कि किस कोण में प्रकाश डाला जाए। छोटी चीज का चित्र लेते समय पहले उसे हाथ में लेकर चारों ओर घुमाकर देख लेना चाहिए। पृष्ठ संख्या 106 कि किस कोण से कौन सी रेखाएं धुंधली हो जाती हैं और कौन सी प्रकाशमान हो जाती हैं। इससे प्रकाश की वक्र गति ऑब्लिक्विटी ज्ञात हो जाएगी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उपयुक्त प्रकाश के चयन में उत्खाता और फोटोग्राफर दोनों को अत्यंत सावधानी रखने की आवश्यकता है। फिल्म में फोटो खींचने के लिए प्रायः सादी अथवा काली एवं सफेद फिल्मों का प्रयोग किया जाता है। आवश्यकता एवं सुविधानुसार रंगीन फिल्मों का भी प्रयोग किया जा सकता है। रंगीन तस्वीरें निस्संदेह अधिक प्रभावोत्पादक होती हैं। छन्ने या फिल्टर विभिन्न रंगों के शीशे होते हैं। वे विभिन्न रंगों को या तो गहरा डार्क बना देते हैं अथवा कुछ को हल्का लाइट कर देते हैं। आकाश में छाए बादल, नीले आसमान आदि प्राकृतिक दृश्यों को पुरातात्विक छायांकन की पृष्ठभूमि के रूप में प्रस्तुत करने के लिए छन्नों का प्रयोग किया जाता है। इनके अलावा हड्डी एवं लघु आकार के पुरावशेषों का फोटो खींचते समय भी छन्नों का उपयोग सार्थक सिद्ध हुआ है। लाल चमकदार प्लेटों के लिए हरे एवं पीले रंग के छन्नों का प्रयोग किया जाता है। यदि सामान्य समय से 6 गुने अधिक समय तक पुरावशेष को कैमरे के सामने फोकस करना हो तो हरे रंग के फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। पीले फिल्टर का प्रयोग 2 गुने समय के लिए होता है। पीले चमकदार प्लेटों के लिए केवल हरे एवं पीले रंग के फिल्टरों का प्रयोग किया जाता है। इन फिल्टरों को लगाने के पूर्व उनका प्रदर्शन काल एक्सपोजर फैक्टर जानना नितांत जरूरी होता है। लेंस पुरातात्विक छायांकन में कम से कम 3 प्रकार के लेंसों का प्रयोग किया जा सकता है। लंबे केंद्र वाला लेंस लॉन्ग फोकस लेंस, मध्य केंद्र वाला लेंस मीडियम फोकस लेंस तथा छोटे केंद्र वाला लेंस शॉर्ट फोकस और वाइड एंगल मापक पुरावशेषों की नाप का अनुमान करने के लिए मापक अथवा पैमाना स्केल पुरातात्विक फोटोग्राफी में लगाया जाता है। पुरावशेषों के आकार प्रकार के अनुसार मापक को सीधा अथवा आड़ा करके रखा जाता है। बड़े आकार की वस्तुओं तथा विस्तृत क्षेत्र के छायांकन में मीटर एवं सेमी के निशानों में वर्गांकित डंडों रैंगिंग रॉड्स का प्रयोग किया जाता है। यदि पुरावशेष छोटा है अथवा क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा है तो उसी के अनुरूप लकड़ी या दफ्ती के बने हुए छोटे आकार के पैमाने का प्रयोग किया जा सकता है। जब क्षेत्र विस्तृत होता है तब किसी स्त्री पुरुष अथवा पशु का उपयोग मापक के रूप में किया जा सकता है। उनको कार्यरत या गतिशील अवस्था में तथा पुरातात्विक दृष्टि से गौण स्थान प्रदान करते हुए प्रदर्शित करना अधिक उपयुक्त होता है। पृष्ठ संख्या 107। सीढ़ी पुरातात्विक फोटोग्राफर के पास सचल सीढ़ी मोबाइल टावर का होना आवश्यक है। इसे घुमावदार तथा तोड़दार होना चाहिए तथा आवश्यकता अनुसार ऊपर नीचे किया जा सके। सीढ़ी के अभाव में ऊंचे लट्ठे गाड़कर मचान बनाया जा सकता है। मचान पर चढ़कर ऊंचाई से फोटो लिया जा सकता है। यदि छोटी बड़ी कई प्रकार की सीढ़ियों की व्यवस्था की जा सके तो विशेष अच्छा हो। डायरी पुरातात्विक छायांकन में प्रत्येक मूल चित्र निगेटिव का समुचित ब्यौरा रखना बहुत जरूरी है। खींचे गए प्रत्येक फोटो के विवरण में पुरास्थल का नाम सेक्शन का नंबर दिनांक समय प्रकाश का समय एक्सपोजर तथा कब एवं किसने किस लिए फोटो खींचा था आदि बातों का स्पष्ट उल्लेख आवश्यक था है। संदूक पुरातात्विक छायाकार के पास एक ऐसा संदूक होना चाहिए जिसमें आवश्यक साज सामान रखे जा सके, जैसे छोटे मोटे मापक ब्रूस फिल्म फिल्टर बीन एवं खींची हुई फिल्में एक्सपोज्ड फिल्म्स आदि। छायांकन के बिना पुरातात्विक विवरण अपर्याप्त एवं अपूर्ण रहेगा। पुरावशेषों एवं पुरानिधियों से प्राप्त ज्ञान को संचित तथा सुरक्षित रखने की जितनी विधियां ज्ञात हैं उनमें छायांकन का प्रमुख स्थान है। उत्खनन करते समय प्राप्त जीर्ण शीर्ण पुरावशेषों को उठाने से खंडित हो जाने की आशंका रहती है। इस प्रकार की पुरानिधियों का उसी अवस्था में फोटो खींचकर उनका सही रिकॉर्ड तैयार किया जा सकता है। इस प्रकार छायांकन का पुरातत्व संबंधी अनुसंधान एवं अध्ययन में महत्व स्वतः सिद्ध है। हवाई छायांकन छायांकन के इतिहास में वायुयान में लगाए जाने वाले कैमरों का निर्माण से इस दिशा में विशेष प्रगति हुई है। हवाई छायांकन एरियल फोटोग्राफी सामान्य छायांकन से इस दृष्टि से भिन्न है कि इसमें किसी स्थल का ऊपर से अथवा सैरसिक ढंग से फोटो खींचा जाता है। हवाई जहाज में लगाए जाने वाले कैमरे अपेक्षाकृत अधिक क्षमता वाले होते हैं, अतएव वे एक बार में अधिक विस्तृत क्षेत्र का चित्र उतारने में सक्षम होते हैं। हवाई छायांकन की इस विधा का क्रमशः एवं धीरे धीरे विकास तथा परिष्कार हुआ। पुरातत्व करने वाले विद्वानों में OGS क्रॉफर्ड नामक एक अंग्रेज का नाम विशेष उल्लेखनीय है। सन 1914 से 1919 के प्रथम विश्व युद्ध में क्रॉफर्ड अंग्रेजी सेना की पश्चिमी कमान में गुप्तचरी से संबंधित छायांकन के विश्लेषण करने के लिए नियुक्त थे। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद क्रॉफर्ड ने हवाई छायांकन संबंधी अपने ज्ञान का उपयोग पुरातत्व के क्षेत्र में किया तथा इस प्रकार हवाई छायांकन के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। क्रॉफर्ड के अतिरिक्त अन्य जिन विद्वानों ने इस क्षेत्र में विशेष कार्य किया पृष्ठ संख्या 108 उनमें फ्रांस के एम लियोरे तथा जर्मनी के थियोडर बियंड के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 से 1945 के मध्य विश्व के अनेक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ताओं को सैनिक सेवा के लिए नियुक्त किया गया। इनमें से अधिकांश का दायित्व छायांकन संबंधी जानकारी की सामरिक दृष्टि से व्याख्या करना था। इस विश्व युद्ध के समय हवाई जहाज में प्रयोग किए जाने वाले कैमरों की क्षमता एवं कार्य प्रणाली में बहुत अधिक विकास तथा परिष्कार हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत युद्ध संबंधी दायित्व में मुक्त होने पर पुरातत्ववेत्ताओं ने इस तकनीकी ज्ञान का उपयोग पुरातत्व के क्षेत्र में किया। पुरातत्व के क्षेत्र में हवाई छायांकन के विकास में इतिहास में मुख्य रूप से चार अवस्थाएं मानी जा सकती हैं। प्रथम अवस्था, यह अवस्था सन 1914 के पहले के समय से संबंधित है। इस अवस्था में हवाई छायांकन की सहायता सुप्रसिद्ध स्मारकों के चित्र खींचने के लिए ली गई। प्रारंभ में कुछ विद्वानों ने गुब्बारों की सहायता से चित्र खींचने का प्रयास किया था। एचएस वेलकम नामक एक अंग्रेज ने सूडान में अपने पुरातात्विक उत्खनन का इसी विधि से सन 1913 में छायांकन करने का प्रयास किया था। द्वितीय अवस्था सन 1914 से सन 1923 के मध्य दूसरी अवस्था का समय माना जा सकता है। इस काल में तकनीकी दृष्टि से हवाई छायांकन के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई। पुरातत्व में हवाई छायांकन के अग्रदूत ओजीएस क्रॉफर्ड नामक विद्वान इसी युग की देन है। क्रॉफर्ड ने हवाई जहाज से साहसिक चित्र खींचकर इंग्लैंड एवं इराक के प्राचीन अज्ञात अनेक स्थानों के विषय में मिट्टी के रंग, प्राचीन टीलों की छाया तथा खड़ी फसलों की हरितिमा के अंतर के आधार पर पता लगाने में सफलता प्राप्त की थी। तृतीय अवस्था, हवाई छायांकन के विकास की तृतीय अवस्था सन 1939 से 1945 के मध्य मानी जा सकती है। इस समय विश्व के अपेक्षाकृत बहुत विस्तृत भूभागों के वायुयानों के माध्यम से चित्र खींचे गए। तकनीकी दृष्टि से भी हवाई छायांकन के क्षेत्र में इस काल में अत्यधिक उन्नति हुई। चतुर्थ अवस्था सन 1945 से अद्यावधि तक मानी जा सकती है। इस काल में पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों के हवाई छायांकन योजनाबद्ध सोद्देश्य ढंग से किए गए। इंग्लैंड, बेल्जियम, नॉर्वे, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, हॉलैंड तथा स्वीडन में पुरातात्विक स्थलों की खोज एवं उनके उत्खनन के छायांकन में हवाई छायांकन से विशेष सहायता ली गई। इन देशों के अतिरिक्त औद्योगिक दृष्टि से समुन्नत अन्य देशों में भी इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत रूस का इस संदर्भ में उदाहरण दिया जा सकता है। पृष्ठ संख्या 109, हवाई छायांकन का महत्व। हवाई छायांकन के विकास के फलस्वरूप पुरावशेषों एवं पुरानिधियों को ज्ञात करने की एक सर्वथा नवीन विधा पुरातत्ववेत्ताओं को मिल गई। इसके पूर्व प्राचीन वस्तुएं आकस्मिक संयोग अथवा अन्वेषण तथा सर्वेक्षण द्वारा ही प्रकाश में आ पाती थी। पुरावशेषों की खोज की एक चौथी विधि के रूप में हवाई छायांकन का समावेश हुआ। इन चारों विधियों में हवाई छायांकन का महत्व सर्वोपरि है, क्योंकि इस विधि से उन स्थलों का ज्ञान होता है जो ऊपरी सतह से सामान्यतः दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। ऐसे पुरास्थल जो आज चौरस एवं समतल खेतों के रूप में विद्यमान हैं, उनके संबंध में हवाई छायांकन के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना संभव है। हवाई छायांकन से प्राप्त जानकारी का वर्गीकरण मुख्य रूप से तीन भागों में किया जा सकता है। एक, प्रतिबिंबित पुरास्थल, शैडो साइट्स, दो, सस्य संकेतिक पुरास्थल, क्रॉप साइट्स, एवं तीन, मृदा चिन्हित पुरास्थल, सॉइल साइट्स। प्रतिबिंबित पुरास्थल, किसी पुरास्थल की ईंटों की दीवारें, बुर्जे या तोरण अथवा मिट्टी की बनी हुई दीवारें आदि यदि जमीन के अंदर दबी हुई है तो इनकी वास्तविक सीमाओं का निर्धारण हवाई छायांकन के माध्यम से संभव है। सस्य संकेत, मानव निवसित पुरास्थलों विशेषकर परीखा आदि में फसल बहुत सस्य श्यामला दिखलाई पड़ती है और उसकी प्रतिबिंब भी अधिक स्पष्ट रूप में दृष्टिगोचर होता है। दूसरी ओर पुरास्थल के नीचे यदि कोई दीवार दबी हुई है अथवा वह स्थल ऐसा भूभाग है जहां आधुनिक काल के मानव के क्रियाकलाप इतने व्यापक एवं प्रभावशाली ढंग से नहीं हुए हैं जिनकी उनकी मूल रूपरेखा को बदल सकते, वहां पर फसल अपेक्षाकृत विरल एवं पीताब दिखलाई देती है। यद्यपि अन्वेषण अथवा सर्वेक्षण के द्वारा भी इन संकेतों की सहायता से दबी हुई पुरानिधियों का पता लगाया जा सकता है, किंतु सर्वेक्षण तभी उपादेय सिद्ध हो सकता है जबकि उपयुक्त संकेत एवं सहायक तत्व स्पष्ट रूप से विद्यमान हो। हवाई छायांकन के लिए इस प्रकार की कोई सीमा नहीं है। मृदा संकेत, ऐसे पुरास्थल जिनको हम नेत्रों से साधारणतः नहीं देख सकते हैं उनको हवाई छायांकन के माध्यम से पहचाना जा सकता है। पुरास्थलों की मिट्टी का रंग अपेक्षाकृत गहरा होता है, इसलिए हवाई जहाज के शक्तिशाली कैमरे उसे आसानी से अलग कर देते हैं। हवाई छायांकन के महत्व का संक्षेप में प्रतिपादन इस प्रकार किया जा सकता है। एक, हवाई छायांकन से प्राप्त जानकारी के आधार पर किसी क्षेत्र के पुरास्थल का पुरातात्विक सर्वेक्षण अधिक सफलता एवं सूक्ष्मता के साथ किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 110। दो, किसी पुरास्थल के उत्खनन की योजना बनाने में हवाई छायांकन से सहायता ली जा सकती है। तीन, इन दो बातों के अतिरिक्त पुरास्थलों के बचाव तथा सुरक्षा के संबंध में नीति निर्धारण में हवाई छायांकन सहायक ही हो सकता है। पुरातत्व के लिए हवाई छायांकन अत्यधिक महत्वपूर्ण है, तथापि हवाई छायांकन की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, जिनका परिचय इस प्रकार से दिया जा सकता है। एक, ऐसे पुरास्थल जहां एक से अधिक संस्कृतियों से संबंधित सामग्री टीलों के विभिन्न स्तरों में छिपी हुई है, उनके विषय में यथेष्ट जानकारी हवाई छायांकन से नहीं बल्कि उत्खनन के द्वारा ही संभव है। दो, वायुयान द्वारा विभिन्न क्षेत्रों तथा पुरास्थलों के जितने चित्र लिए गए हैं वे सभी पुरातात्विक अध्ययन हेतु उपलब्ध नहीं है। उनमें से अधिकांश सैनिक एवं गुप्तचरी से संबंधित होने के कारण प्रतिबंधित एवं अनुपलब्ध हैं। यह बात भारत के संदर्भ में विशेष रूप से सही है। तीन, अधिकांश हवाई छायांकनों का मूल उद्देश्य पृथ्वी के गर्भ में छिपी खनिज संपदा तथा प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाना था, इसलिए ये छायांकन पुरातत्व की दृष्टि से बहुत उपयोगी नहीं है। चार, विश्व के बहुत से ऐसे भूभाग हैं जिनका पुरातात्विक दृष्टि से हवाई छायांकन होना शेष है। इन सीमाओं के होते हुए भी हवाई छायांकन एक वैज्ञानिक विधि है, इसलिए इसकी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। पुरातात्विक अध्ययन एवं अनुसंधान को इसने एक नई दिशा दिया है। वे पुरास्थल जो साधारणतः दृष्टिगोचर नहीं होते हैं उन्हें आकाशीय छायांकन से ज्ञात किया जा सकता है। आकाशीय छायांकन से पुरास्थलों एवं प्राचीन स्मारकों का ऊंचाई तीन, अधिकांश हवाई छायांकनों का मूल उद्देश्य पृथ्वी के गर्भ में छिपी खनिज संपदा तथा प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाना था, इसलिए यह छायांकन पुरातत्व की दृष्टि से बहुत उपयोगी नहीं है। चार, विश्व के बहुत से ऐसे भूभाग हैं जिनका पुरातात्विक दृष्टि से हवाई छायांकन होना शेष है। इन सीमाओं के होते हुए भी हवाई छायांकन एक वैज्ञानिक विधि है, इसलिए इसकी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। पुरातात्विक अध्ययन एवं अनुसंधान को इसने एक नई दिशा दिया है। वे पुरास्थल जो साधारणतः दृष्टिगोचर नहीं होते हैं उन्हें आकाशीय छायांकन से ज्ञात किया जा सकता है। आकाशीय छायांकन से पुरास्थलों एवं प्राचीन स्मारकों का ऊंचाई से शैक्षिक छायांकन संभव है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पुरातत्व में आकाशीय छायांकन का विशिष्ट महत्व है।